ओम शांति। मैं निवेदन करूंगा ऑफिसर से कि आगे के रूम में आ सकते हैं, जो ऑफिसर्स हैं हमारे, और जो बहुत पीछे बैठे हैं वो थोड़ा आगे आ सकते हैं। तो हम आज के कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं, एक विशेष कार्यक्रम जिसमें आपके सवाल होंगे और हमारे बीच अति आदरणीय सूरज भाई के जवाब होंगे। एक बार हम करतल ध्वनि से आदरणीय सूरज भाई का स्वागत करते हैं। इससे पूर्व आज का हम कार्यक्रम शुरू करें, सर्वप्रथम मैं भाई साहब का परिचय दूंगा, उसके बाद भाई साहब हमें एक इंस्पिरेशनल टॉक देंगे थोड़े कुछ शब्दों में, और फिर हम क्वेश्चन आंसर्स को लेंगे। क्योंकि सभा बहुत बड़ी है, सभी के क्वेश्चंस हम नहीं ले पाएंगे, बट समय की सीमा को देखते हुए 7:30 तक हम इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे। तो परिचय इस प्रकार से है कि भाई साहब का पूरा नाम है राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई। आपका जन्म 2 मई 1950 को हुआ, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। आप साइंस ग्रेजुएट हैं फ्रॉम मेरठ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। इस ज्ञान से आप 1964 में जुड़े, कह सकते हैं 14 साल की आयु में, और 18 साल की आयु में, दैट इज 1968, आपने अपने जीवन को समर्पित किया ईश्वरी सेवाओं के लिए। और तब हमारे बीच में जो ब्रह्मा बाबा की फोटो आप देख रहे हैं वो थे इस यज्ञ में, और उनके रहते आपने अपने को डेडिकेट किया फॉर दी गॉडली सर्विसेज। तो वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं कि कितनी दूरदर्शिता या परिपक्वता रही होगी इनके अंदर, जो ये समझ गए तभी कि भगवान आ चुका है या भगवान का ये संदेश सत्य है। जैसा कि इनका नाम सूर्य है, तो जैसे रोज सूर्य निकलता है और रोशनी देता है दुनिया को, ऐसा इनके अंदर भी ज्ञान का सूर्य इस प्रकार से चमकता है, जो ये अपने आचरण और शब्दों द्वारा कईयों को रोशनी देते हैं। जिन्होंने भी अभी इनको देखा है, क्योंकि 2 दिन से आपने हमको अमृत वेला का मेडिटेशन कराया है, तो हम सब परिचित भी हुए हैं इनको देख के, तो हमें दिखता है कि चेहरे पे वो रुहाब है, दैट है ना, रेडियंस है स्पिरिचुअलिटी की। दिस इज ऑल द रिजल्ट ऑफ मेडिटेशन एंड अ प्योर लाइफ स्टाइल। भ्राता सूर्य जी जो हैं एक इंस्पिरेशन है हम सभी के लिए इस यज्ञ में, फॉर ऑल द क्लासेस ऑफ द सोसाइटी, बी यूथ, बी द एल्डर्स, बी द फैमिली मेंबर्स। क्योंकि जिस प्रकार का इनका जीवन रहा है उसमें भी बहुत संघर्ष रहे हैं, बट इन्होंने जिस प्रकार से हर चैलेंज को मेडिटेशन के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से ओवरकम किया, तो वो अपने आप में अनुकरणीय है। मैं आपको रिसेंट एक बहुत सुंदर बात बताना चाहता हूं कि हमारे बीच महामहिम राष्ट्रपति 3 और 4 जनवरी को इस प्रांगण में पहुंची थी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, और उन्होंने यहां 3 तारीख रात निवास किया था पीस कॉटेज में। तो जब वो यहां पहुंची तो स्वागत में सूरज भाई भी थे, तो उनको मिलते ही उन्होंने उनको अपने साथ कहा, चलो मेरे साथ आप चलिए, जो कि कोई प्रोटोकॉल में ऐसा प्रोग्राम नहीं फिक्स था। और अपने साथ लेते हुए वो पीस कॉटेज तक भाई साहब को लेके गई और उनको ये कहा कि देखिए, मैं रोज आपका इंस्पिरेशन जो आप ब्रॉडकास्ट करते वो सुनती हूं और आपके लेक्चर सुनती हूं, तो ऐसी महान हस्ती हमारे बीच में बैठी, एक बार फिर जोरदार तालियां। वर्तमान में सूर्य भाई हमारे एक सीनियर राजयोगी टीचर हैं और हमारे मुख्यालय में स्थित हैं, पर जब ये 1968 में आए थे तब पिताश्री ब्रह्मा जी ने इन्हें इनके योगयुक्त अवस्था को देखकर भोजन बनाने की सेवा दी थी। तब इस यज्ञ का भोजन जो बनता था वो बहुत प्रिमिटिव था, दैट इज लकड़ी पे, चूल्हे पे बनता था। और हम सब समझते हैं, हम सब ने भी वो देखा है कि कैसे जब चूल्हे में भोजन बनता है, लकड़ी जलती है, तो कितना धुआं होता है और कितनी परेशानी होती है और कितना समय लगता है। बट वो चीज इनके योग बल से और समय के साथ आज आप देखते हैं कि 50,000 का भोजन मात्र 2 घंटे में स्टीम से बन रहा है। तो तीनों प्रांगण जो हमारे हैं मुख्य, शांति वन, पांडव भवन और ज्ञान सरोवर, तीनों की जो किचन की सेवा है आप ही के नीचे चल रही है, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। आई थिंक सो मोर देन 100 ब्रदर एंड सिस्टर्स आर वर्किंग इन दीज किचन्स जो समर्पित हैं, और आप सिर्फ उनको इशारा करते हैं। ही डजंट डज टू मच, ही हैज जस्ट टॉट देम, ही हैज ट्रेन्ड देम सो वेल कि वो सब अपना करते हैं, सिर्फ जहां जरूरत होती है तो इशारा करते हैं। भाई साहब जो हैं क्या काफी रिसर्च इन्होंने किया है, ही हैज ऑलवेज बीन एक्सपेरिमेंटिंग राजयोगा एंड दिस लाइफस्टाइल इन वेरियस प्लेसेस, और इसमें इनको काफी सक्सेस मिला है, जैसे कि क्यूरिंग डिजीजेस, बीमारियों को राजयोगा द्वारा ठीक करना, छोटे और बड़े प्रॉब्लम्स को अपने संकल्प शक्ति द्वारा ठीक करना या उसमें समाधान करना, अपने मन पे काबू करके उसको मास्टर करना ताकि हमारे वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स, व्यर्थ विचार ना चलें, और कैसे हम जिंदगी को खुशनुमा बनाएं, ये सारे चीजों पे भाई साहब ने गहन रिसर्च किया है और वो आज फिर हम सबसे वो शेयर करते रहते हैं। आप एक कुशल लेखक भी हैं, हमारी एक मैगजीन है ज्ञानामृत, उसमें आप देखेंगे कि भाई साहब का जरूर एक लेख होता है, और कई सारे जो भी हमारे जर्नल्स हैं उनमें इनका लेख होता है। इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं, जिन जो मुख्य हैं वो ये है, स्ट्रेस फ्री लाइफ, यूज ऑफ थॉट पावर, थिंक अ मोमेंट, हेयर आर द डेज ऑफ मीटिंग विद द सुप्रीम, एलिवेटेड थिंकिंग, द पेरेनियल नेक्टर ऑफ राजा योगा एंड इंटेंस मेडिटेशन। सूर्य भाई की एक विशेषता रही है कि आप अध्ययन बहुत करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, जब भी इन्हें समय मिलता है तो ये पढ़ाई को वो या तो योग करते हैं या फिर पढ़ते हैं। तो इन्होंने सारे स्क्रिप्चर्स, सारे रिलीजियस टेक्स्ट और फिलॉसफी को पढ़ा है, और आप एक जर्नलिस्ट और राइटर भी हैं, भारत के सभी कोनों को आपने ट्रैवल किया है और विदेशों में भी आप गए हैं, सुरक्षा बलों के प्रति आपका बहुत गहरा सम्मान है, और आप सुरक्षा बलों की सेवाओं में जब भी हमारा ऐसा प्रोग्राम होता है SSW का, आप हमारे बीच में उपस्थित होते हैं, बहुत खुशी से अपनी सेवाएं देते हैं, एक बार फिर जोरदार तालियां। विदेशों में भी आपने कई बार अपने भ्रमण के दौरान है ना, कई विदेशों में भी आप कई देशों में गए हैं, जैसे कि UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, अफ्रीका, कई देशों को आपने रिप्रेजेंट किया है भारत को, भारत की तरफ से, ब्रह्मा कुमारी की तरफ से। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में भ्राता सूर्य भाई हैं। पहले हम उनके विचार सुनेंगे, उनकी इंस्पिरेशन सुनेंगे, फिर वील टेक ऑन द क्वेश्चन आंसर्स। ओम शांति।
ओम शांति। सभी बहुत आनंदित हैं ज्ञान सरोवर में, हैप्पी लाइफ। हमें सीखना होता है कि कलयुग के इस निगेटिव माहौल में हम कैसे अच्छे रहें। ये अच्छा शब्द बहुत वाइड है। हमारा परिवार सुखी रहे, संघर्षों से मुक्त रहें, समस्याओं से हम मुक्त रहें, हम समस्या क्रिएट न करें बल्कि समस्याओं को हल करें। ये स्पिरिचुअल नॉलेज हमें यही सिखाती है। तो जैसे भाई साहब ने कहा, मेरा मुख्य सब्जेक्ट राजयोग के साथ पावर ऑफ थॉट रहा, मन की शक्ति। आज मैं थोड़ा आपको उसके बारे में कहूंगा, फिर क्वेश्चंस लेंगे। हम सबके पास बहुत बड़ी शक्ति है मन की। हमारा हर विचार, हर संकल्प एनर्जी को जनरेट करता है। ये बात आप सबको मालूम होनी चाहिए। जो हम लगातार सोच रहे हैं, हजारों साल से सोचते आ रहे हैं, उसे एनर्जी पैदा हो रही है। वो सबसे पहले हमारे ब्रेन में जाती है, बॉडी में फैलती है, चारों ओर फैलती है, हमारे चारों ओर के वातावरण को चार्ज करती है, निगेटिवली और पॉजिटिवली। और ये सब चीजें ही आधार हैं मनुष्य सुखी है या कष्ट में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई हमारी पावर ऑफ थॉट। मैंने अपनी ये यात्रा जहां से शुरू की थी वह एक ईश्वरीय महावाक्य था, प्रॉब्लम्स क्या हैं? उत्तर था, प्रॉब्लम्स और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है। उन्हीं दिनों दिल्ली में एक घटना हुई थी, उससे हमें ये बात बहुत क्लियर हुई। दो आइसक्रीम बेचने वाले साथ साथ बेच रहे थे, आपको जो पुराने हैं चाकू से काट के दिया करते थे, गोल गोल डब्बा सा लकड़ी का। एक के पास ग्राहक आया, दूसरे ने उसको बुला लिया, मेरी अच्छी है आओ मेरे से लो। पहले वाले को गुस्सा आया और वो जो चाकू था ना वो उसने उसको मार दिया और हार्ट पे लग गया, उसकी मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु और इसको आजीवन जेल। तो देखिए, एक छोटी सी बात ने दो परिवारों को नष्ट कर दिया। तो समस्या कहां से पैदा हुई? एक कमजोर मन से, कि उसे गुस्सा आया और एक बड़ी घटना को उसने अंजाम दे दिया। हम सब अपने मन को जितना पावरफुल बनाएंगे उतना समस्याएं भाग जाएंगी। हमने जो कार्य किया बहुत लाखों लोगों पर किया, हजारों पे नहीं लाखों पर, एक संकल्प दिया सबको, अभी भी मैं दे रहा हूं, आज भी 10 को दिया होगा, जिससे समस्याएं हल होती हुई देखी गई। जैसे कमजोर मन समस्याओं को क्रिएट करता है, वैसे ही पावरफुल मन उन्हें नष्ट भी कर देता है। इस सिद्धांत को ख्याल में रखते हुए सभी को सिखाया गया कि यू आर मोस्ट पावरफुल, अपनी शक्तियों को पहचानो। बस मनुष्य की ये बहुत बड़ी मिसिंग हो गई है कि वो बाह्य साधनों के आधार पर चलते चलते अपनी शक्तियों को भूल गया है। जैसे हमारे पास कंप्यूटर युग है, मोबाइल कल्चर है, बहुत फायदे हैं इससे, आपके सिक्योरिटी के फील्ड में इसका बहुत उपयोग हो रहा है। लेकिन आप एक कॉमन व्यक्ति को देखो जो व्हाट्सएप खोल रहा है, उस पे कुछ कुछ देख रहा है, उसमें आधी बातें झूठी आधी सच्ची हैं, उसका इफेक्ट उसके ब्रेन पर हो रहा है, वो उसके मन के विचारों को अलग अलग दिशाओं में ले जा रहा है, उससे उसकी मन की शक्तियां नष्ट हो रही हैं। आजकल के बुद्धिमान मनुष्य को ये जानना चाहिए। आप सभी सुन लें और सभी को सिखाएं, अपने परिवारों से शुरू करें कि जितना हम ज्यादा सोचते हैं, जितना निगेटिव सोचते हैं, व्यर्थ सोचते हैं, हमारी मन की शक्तियां उतनी ही नष्ट होती हैं। मन कमजोर होता जाता है, जब चैलेंजेज आते हैं, जब समस्याएं आती हैं, जब बीमारियां आती हैं, जब संबंधों में टक्कर होती है, तो मनुष्य परेशान हो जाता है, अब क्या करूं, एकदम फ्रस्ट्रेट, या सुसाइड कर रहे हैं लोग आजकल, बहुत बढ़ गया सुसाइडल टेंडेंसी, या डिप्रेस हो रहे हैं, बहुतों को रात को नींद नहीं आ रही, उनको इसका कारण पता नहीं है। कारण यही है कि लंबे समय से मन की शक्तियों को नष्ट कर दिया है। अटेंशन देंगे जीवन में, अगर कुछ पाना है, देखिए एक पाना है, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें आप प्रोग्रेस करते जाएं, आपकी प्रमोशन होती जाए, आप बड़े पदों पर पहुंचते जाएं, एक ये चीज है। दूसरी चीज है अपना व्यक्तिगत लाइफ, वो कितना सुखी है, हमारा मनोबल उसमें कितना बढ़ा हुआ है, हम कितने सुंदर व्यवहार की कला को सीखे हैं, हम कितनों को सुख देते हैं, हमने अपने काम पर, अपने अभिमान पर, अपने क्रोध पर कितनी विजय प्राप्त की है, ये रियल प्रोग्रेस है मनुष्य की। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हम बहुत पावरफुल हैं। देखिए आत्मा के बारे में आपने एक छोटी बात सुन ली होगी, और पहले से भी ये बात थोड़ी बहुत प्रचलित है, हालांकि आजकल लोग इन चर्चाओं को नहीं सुनते, हम आत्माएं हैं, आत्मा मरती ही नहीं, आत्मा को एटम बम की अग्नि भी जला नहीं सकती, पता है ना। इमॉर्टल है आत्मा, शरीर मरते हैं, शरीर छूटते हैं, आग में शरीर जलता है, आत्मा दूसरी यात्रा पर चल देती है। आत्मा सो पावरफुल है कि उसे एटम बम, हाइड्रोजन बम भी जला नहीं सकता। हम हैं वो आत्माएं, तो हम बहुत पावरफुल हैं, इसे एक्सेप्ट कर लो। हम भगवान की संतान हैं, ही इज ऑल माइटी, तो हम कमजोर थोड़ा ही होंगे। टाइगर का बच्चा टाइगर ही होता है ना। एक बहुत अच्छी आज कहानी आई जरा सी अखबार में, बहुत सारे बंदरों को फॉरेस्ट में शेरों ने घेर लिया। बंदर घबराए तो सही, पर शेर कई थे, एक भी बंदर को पकड़ नहीं पाए। छोटी सी घटना थी पर कुछ सिखाने वाली थी। हमें सीखना है बुद्धि के विकास के साथ मन की शक्तियों का भी विकास करेंगे तो हम भगवान की संतान हैं। ही इज ऑल माइटी एंड वी आर, हम इसको नाम देते हैं, भगवान ने ही नाम दिया है, यू आर मास्टर ऑल माइटी, मोस्ट पावरफुल, तुम बहुत शक्तिशाली हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। अगर हम ये याद करते हैं तो हमसे जो वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं वो विघ्न समस्याओं को नष्ट करते हैं। ये बहुत सिंपल और बहुत पावरफुल थ्योरी है, इसके आधार से हम अनेक समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, फिर क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। दो सेनाएं आपस में लड़ रही हैं। एक सेना को किसी बहुत बड़े भविष्यवक्ता ने या ज्योतिषी ने बता दिया है जीत तुम्हारी ही होगी, और कमांडर ने, जनरल ने उस सेना के मनोबल को बढ़ा दिया है जीत तुम्हारी ही होगी, तो उसकी जीत हो जाएगी, मनोबल बढ़ गया, क्योंकि असली ताकत मन में है। मनु जब घबराता नहीं, जब वो डरता नहीं है तो उसकी शक्तियां कई गुनी बढ़ जाती हैं। मैं भी थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा करता था। एक राजा ने दूसरे राजा पर अटैक किया, दूसरे राजा की सेना ज्यादा थी, पावरफुल थी, बीच में नदी थी, इस राजा ने नदी को पार किया अपनी सेना सहित और वहां जाते ही अपनी सारी नाव जलवा दी। क्या पीछे जाने का कोई मार्ग नहीं है, या विजय या मृत्यु, और मनोबल इतना बढ़ा दिया कि विजय हो गई। तो हम अपनी मन की शक्तियों को पहचानेंगे और उसके द्वारा समस्याओं को हल करेंगे और एनर्जी देंगे अपने ब्रेन को। अब हम क्वेश्चंस लेंगे और बाकी विस्तार क्वेश्चंस के आंसर में करेंगे। चलो
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो पहला सवाल इस प्रकार से है, क्वेश्चन है कि हम किस प्रकार से शांत, अपने मन को शांत रख सकते हैं, और क्या अध्यात्म हमें अपने इस शांत व्यक्तित्व को बनाए रखने में मदद कर सकता है, अर्थात शांति कैसे जीवन का एक हिस्सा बने, अभिन्न अंग बने।
बहुत वाइज क्वेश्चन पूछा है, जिसने पूछा उसको बधाई, क्योंकि ये क्वेश्चन प्राय पूछा नहीं जाता। जो व्यक्ति मन को शांत कर देता है उसका मन बहुत पावरफुल हो जाता है। जो व्यक्ति मन को शांत कर लेता है उसकी बुद्धि बहुत डिवाइन होने लगती है, वो नई नई रिसर्च कर सकता है। आपने अगर अच्छे अच्छे साइंटिस्ट किया, अच्छे अच्छे जो स्कॉलर्स हुए उनकी चर्चा सुनी हो, या अच्छे अच्छे ऋषि हुए, उनका एक लक्ष्य यही था, मन को शांत कर देना। टॉपिक बहुत बड़ा, हम इस टॉपिक को अपनी जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां उनकी क्लासेज में लिया करते हैं कि ज्ञान की बातों को यूज करके हम मन को भागने से, भटकने से कैसे कंट्रोल करें, वो एक कला है। लेकिन आप सभी अभी राजयोग के पथ पर पहला कदम बढ़ा रहे हैं तो मैं आपको एक छोटी सी विधि बता देता हूं, और इस विधि को हम बहुत सारी बातों में अप्लाई करेंगे। मैं डिटेल कर देता हूं। जब मनुष्य सवेरे उठता है, आप सभी जल्दी उठते हैं, मैंने बहुत पुलिस वालों को देखा जल्दी उठकर पहुंच जाते हैं मैदान में, उठते ही पहले 10 मिनट हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है एवरीडे। सभी सत्य को जान लें, ये हम पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की चर्चा कर रहे हैं। सवेरे 10 मिनट आंख खुलते ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पीरियड है हमारे पास, भाग्य निर्माण का समय है हमारे पास। अपने फ्यूचर को हम जितना चाहे सुंदर बना लें, वो समय है हर मनुष्य के पास। क्यों? क्योंकि 10 मिनट तक मनुष्य का सबकॉन्शियस माइंड अंतर मन जगा रहता है। जो थॉट हम उसको देंगे, मनोवैज्ञानिकों जिसको कमांड कहा है, हम कमांड देते हैं सबकॉन्शियस माइंड को, हम सिंपल भाषा यूज कर रहे हैं। जो थॉट्स हम अपने मन को उस समय देंगे, आप समझ लें, विश्वास कर लें, मन की शक्ति वही करेगी। 10 मिनट में पहले 5 मिनट और इम्पोर्टेंट, 3 मिनट मोर इम्पोर्टेंट और पहला मिनट मोस्ट इम्पोर्टेंट। उठते ही रोज आप आदत डाल लें, भगवान को, अपने परमपिता को गुड मॉर्निंग करें और याद करना, 7 बार याद कर लेना 1 मिनट में ही, आई एम ए पीसफुल सोल, मैं पीसफुल हूं, मैं इस माइंड की कंट्रोलर हूं, मेरा माइंड पीसफुल हो गया है, मैं पीसफुल हूं, मेरा माइंड पीसफुल हो गया है। 1 मिनट ये सुंदर चिंतन कर लेना पहले, दूसरे, तीसरे मिनट तक, और देखना आपके मन को कितना सुख मिलेगा, उसको आनंद प्राप्त होगा और वो आनंद के लिए इधर उधर भटकेगा नहीं। साथ में ये भी कह दूं, जो लोग उठते ही मोबाइल का यूज करते हैं, जो लोग उठते ही अखबार देखते हैं, वो अपने लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जगा है, वो बैड एनर्जी, वो निगेटिव न्यूज, वो गंदी चीजें, वो वायलेंट चीजें, वो डराने वाली चीजें ब्रेन में समा जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट
भाई साहब। दूसरा सवाल है कि किस प्रकार से हम बैलेंस बनाए रख सकते हैं अपने परिवार में और वर्क प्लेस में, जिससे जीवन खुशनुमा बने।
बहुत जरूरी है और बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि बहुत लोग अपने प्रोफेशन में इतने ज्यादा टाइम उन्हें देना पड़ता है कि वो अपने सांसारिक परिवार और बच्चे और प्रोफेशन, इसमें बैलेंस नहीं ला पाते हैं। जैसे मैं आजकल बताऊं आपको, कंप्यूटर का युग है, हमारे यहाँ आने वाले बहुत लोग, लड़के लड़कियां CA बनते हैं। अब CA बन गए, पहले तो बहुत मेहनत की पढ़ाई में, सैलरी अच्छी मिलने लगी शुरू से ही, लेकिन सवेरे 8 बजे काम पर जा रहे हैं, रात को 10 बजे आ रहे हैं, आते ही खा पी के सो रहे हैं, फिर 6 बजे उठे, फिर नहा धो के खा पी के चल दिए, दिस इज देयर लाइफ। तो बहुत बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं कि इसलिए तो पढ़ाई नहीं की थी कि लाइफ ऐसा हो जाएगा, एक चक्रव्यूह में हम तो उलझ गए हैं। तो हमें ये जो अध्यात्म है, ये जो राजयोग है, ये बहुत सुंदर बैलेंस सिखाता है। आप सभी भाई बहने, मैं बहुत कम बात कह रहा हूं, आधा घंटा सवेरे आधा घंटा शाम को राजयोग मेडिटेशन और स्पिरिचुअल स्टडी में थोड़ा थोड़ा समय देंगे, और एक संकल्प कर लो कि हमें बैलेंस रखना है, हम बहुत धन कमा लें, हालांकि आप में से बहुतों के पास वो इच्छा नहीं होगी, लेकिन हम बहुत धन कमा लें और ये करेंगे, वही केवल अच्छा लक्ष्य नहीं है। मनुष्य के जीवन में उसको बहुत कुछ चाहिए। देखो आपके पास बच्चे हैं, बच्चे वेल क्वालिफाइड हो जाएं, बच्चे वेल सेटल्ड हो जाएं, आपका जीवन सुखी हो जाए, सबकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे, आपके घर में खुशहाली रहे, पीस रहे, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, ये सब चीजें एक साथ आवश्यक हैं। एक व्यक्ति बहुत धन कमा रहा हो लेकिन जब वो घर आता हो तो उसे समस्याएं सुननी पड़ती हों, उसका मन घर आने पर कैसा लगेगा? घर तो एक शांति का स्थान है, आराम का, चैन की जगह है, आते ही उसे समस्याएं सुननी पड़े तो बड़ा खराब हो जाता है। तो इन सब चीजों का एक बैलेंस रखना आवश्यक है। आप विचार कर लें कि हमें एक ही साइड में बहुत नहीं चले जाना है, जो जो जीवन के ये भिन्न भिन्न फैक्टर्स हैं इनको भी महत्व देना है। जितना महत्व काम धंधों का है, जितना महत्व प्रोग्रेस और प्रमोशन का है, उतना ही महत्व फैमिली कॉन्फ्रेंस का भी है। समझ गए फैमिली कॉन्फ्रेंस? आप फैमिली के साथ भी कुछ समय बिताएं, बच्चों की भी सुने। हालांकि युग बदल गया है 10 साल में, सबके हाथ में अपने अपने फोन हैं, कोई किससे बात भी नहीं करता। पहले हम एयरपोर्ट पे जाते थे, लोग आपस में मिलते जुलते थे, आजकल जब वेटिंग उसमें बैठे रहते हैं तो सब अपने मोबाइल पे बिजी रहते हैं। तो कल्चर बदल गई, इससे वन साइडेड हो गया है मनुष्य और बैलेंस बिगड़ गया है। इसलिए स्पिरिचुअल नॉलेज, राजयोग, मेडिटेशन पे भी ध्यान देंगे, आपकी शक्तियां बढ़ेंगी और आप एक चीज अनुभव करेंगे। अगर आप शुरू से ही अनुभव देखना चाहेंगे, 1 घंटे का काम 50 मिनट में पूरा हो गया, फिर 1 घंटे का काम 40 मिनट में पूरा होने लगा, लाइफ विल बिकम ईजी। इस तरह बैलेंस का ध्यान रखेंगे।
भाई साहब, आत्मा के संबंध में कुछ सवाल पूछे गए हैं कि आत्मा क्या मेल है या फीमेल, और आत्मा की जो जर्नी है वो आफ्टर डेथ क्या होती है, और जब हम सोते हैं तो ये आत्मा कहाँ जाती है?
बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखिए, आत्मा तो इटर्नल है, पॉइंट ऑफ एनर्जी है, पॉइंट ऑफ माइट है, वो तो सदा चलती रहती है। एक शरीर छोड़ती है, दूसरा लेती है, वो छोड़ती है, तीसरा लेती है, और इस तरह ये 84 जन्मों के चक्र में आत्मा आती रहती है। बहुत ध्यान देने की बात है, किसी भी मनुष्य की अंतिम समय की मनोस्थिति जो होती है, ध्यान से सुन लेंगे, सीक्रेट ऑफ डीप फिलोसॉफी, अंतिम समय जो उसके विचार हैं, अंतिम समय जहां उसका अटेंशन है, अंतिम समय जहां उसको खिंचाव हो रहा है, उसके आधार से उसका फ्यूचर डिटरमाइन होता है, अगला जन्म। ये बात, और स्वप्नों में हो, नींद में ब्रेन रिलैक्स होता है तो आत्मा का कनेक्शन ब्रेन के कुछ केंद्रों से कट ऑफ हो जाता है, देह से निकल जाएगी। ब्रेन में बहुत सारे केंद्र हैं, जैसे आंखों का एक है, अब रात को आंखों से आत्मा को देखना नहीं है, उसे कनेक्शन कट ऑफ हुआ, उसे कुछ सुनना नहीं है, उसे कुछ बोलना नहीं है, उसे कुछ खाना नहीं है, और बहुत सारी एक्टिविटी नहीं करनी है, उन केंद्रों से आत्मा डिस्कनेक्ट कर लेती है अपने को, तो शरीर में ही रहती है और रेस्ट जैसा होता है आत्मा को भी और शरीर को भी। ये आत्मा की स्थिति होती है नींद में।
एक सवाल ये भी पूछा गया है कि जब हम कभी कोई दुख और पीड़ा से गुजरते हैं तो कहा जाता है कि ये आपके पिछले कर्मों का फल है, तो हम इसे कैसे इसको स्वीकार करें? और दूसरी चीज, जो परमात्मा है या भगवान है, उसका हम मनुष्यों के प्रति क्या विशेष कर्तव्य है, और हम अपने इस जीवन को जो मिला है हम क्या समझें कि इसका क्या पर्पस है?
3 क्वेश्चन हो गए। पर्पस ऑफ लाइफ, बहुत खुश रहना, प्रोग्रेस करना, पावरफुल बनना, कुछ सीखना, कुछ सिखाना, और परफेक्शन की ओर बढ़ना। ये मनुष्य का लक्ष्य होता है। नॉर्मल रूप से भी हम देखते हैं, जिस फील्ड में आप कार्यरत हैं, आप जरूर चाहते होंगे इस फील्ड में मैं परफेक्ट हूं, सारी नॉलेज मुझे हो, परफेक्टली मैं काम करूं। परमात्मा का एटीट्यूड मनुष्यों के लिए, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बड़े वाइज क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, नहीं तो लोग यही पूछते हैं मैं बहुत इमोशनल हूं, मैं रोती बहुत हूं, क्या करूं, बच्चे मेरा कहा नहीं मानते, मैं क्या करूं। परमात्मा हम सभी का पिता है, उसने हमें संसार में भरपूर करके भेजा था। वी वर परफेक्ट इन द बिगिनिंग, हमने अपनी शक्तियों को यूज किया, उसने हमें फुल्ली गाइड किया था क्या करो क्या नहीं करो। जन्म लेते लेते मनुष्य उस गाइडलाइन को भूलता जाता है, वो किताबों में भी लिखी रहती है, कुछ शास्त्रों में भी लिखी रहती है, लेकिन वो सब भूलते जाते हैं मनुष्य, क्योंकि भौतिकता का प्रचार प्रसार होता जाता है, मनुष्य का बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ता जाता है, मनोविकार बढ़ते हैं तो वो चीजें छूटती हैं पीछे। फिर जब मनुष्य नीचे उतर आता है तब वो दुखी होता है, जो प्रश्न पूछा ना, दुख होता है, कष्ट होते हैं। भगवान आकर फिर गाइड करते हैं, ज्ञान देते हैं और दुखों से मुक्ति का रास्ता बताते हैं। तो परमात्मा का काम है, हम उसकी संतान हैं, हमें पुनः मार्ग दिखाना, सुखों का मार्ग, शांति का मार्ग, प्रेम का मार्ग, हम शक्तिशाली कैसे बने, हम अपनी परफेक्शन की ओर, अपनी ओरिजिनल स्टेट की ओर कैसे चलें, इसके लिए आकर वो गाइड करता है। और मैं आपको ये बहुत खुशी और ईश्वरीय खुमारी की बात कहता हूं कि यहाँ जो कुछ आपको ज्ञान दिया जा रहा है वो हमारा नहीं है, वो हमारी कोई रिसर्च उस तरह की नहीं थी, ये परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान है। जब पीड़ा होती है, जब कष्ट आते हैं परिवारों में, जीवन में, अनेक तरीके हैं उसको पार करने के, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम अपने मनोबल से पार कर सकते हैं। मैं एक बात कहा करता हूं, आपको भी कह देता हूं, समस्याओं को समस्या मानना ही सबसे बड़ी समस्या है। एम आई राइट? बहुत समस्या होती नहीं, मनो सेंसिटिव होने के कारण ज्यादा सोचता है ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। बहुत लोगों के फील्ड में मैंने देखा कैसे बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग भी मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, किसी का प्रमोशन नहीं हुआ, उसके साथी का हो गया, दोनों समान रैंक में थे, उसने सुसाइड कर लिया, बहुत बुरी घटना थी, मेरे को बताया उसके साथी ने आकर यहां। तो हमें अपने मनोबल को कमजोर नहीं करना है, तब हम समस्याओं को समस्या नहीं चैलेंज मानकर पार करेंगे, और हर चैलेंज हमें माइट देगा, ध्यान देंगे, एवरी चैलेंज विल एम्पावर यू। अगर आप उसे पार करते हैं, अगर निराश नहीं होते तो दुख आता है, सुख भी आएगा, बीमारी आई है जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो कुछ आया है वो जाएगा। ऐसे अपने मन को चेंज करेंगे, थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन का एक अर्थ है ऑलमाइटी भगवान से शक्तियां लेना, ताकि हमारी मन की शक्तियां बढ़ने लगें। शक्तियां लेंगे, मन की शक्तियां बढ़ेंगी और दुख दुख फील नहीं होगा, बहुत अच्छा अनुभव सभी करेंगे, जो हम लोग बहुत अच्छा करते हैं। ऐसे नहीं, तकलीफें हमें नहीं होती, बीमारियां हमें नहीं आती, आती हैं, लेकिन हम उससे बहुत कम फील करते हैं, परेशान नहीं होते। मैंने तो अपने जीवन में रखा हुआ है, कुछ भी हो जाए मन को बीमार नहीं करना है। और आप भी अगर ये कला सीख लें, बातें तो आएंगी और जाएंगी, धन भी आएगा जाएगा, पद पोजीशन भी आज मिलेगी कल जा सकती है, लेकिन मन की खुशी को, मन की हेल्थ को हमसे कोई छीन नहीं सकता, ऐसा अगर हम संकल्प रखें तो ये दुख चैलेंजेज आराम से पार हो जाएंगे। और भी कुछ चीजें हैं जो आप सीखेंगे, अभी सीखनी है राजयोग मेडिटेशन में, जब हमारा भगवान से कनेक्शन हो जाता है, जब हम उससे जुड़ जाते हैं, जब हमें ये फीलिंग होने लगती है कि वो हमारा है, आपको ये फील करना है। गॉड इज नॉट ओनली गॉड कि हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं उसके आगे, हे प्रभु जी ये दे दो, हे प्रभु जी ये दे दो, ये नहीं, वो हमारा है, हमारा उस पर अधिकार है। इस अधिकार को दो रूप से आप यूज करेंगे, जब आपके पास कोई बड़ी चीजें आ जाएं, जब आपकी कुछ भी समझ में ना आए कि क्या करें क्या ना करें, तब अपनी प्रॉब्लम, तब वो चिंता, तब वो परेशानी, यू हैव टू सरेंडर टू गॉड योर फादर। गॉड न कह के मेरा शिव बाबा, उसको अर्पित करो और आपको अनुभव होगा वो आपकी कितनी केयर करता है, वो कैसे आपकी चिंताओं को हर लेता है। लेकिन उससे ये नाता बहुत अच्छा जोड़ना चाहिए। राजयोग हमें यही कला सिखा रहा है, केवल ध्यान नहीं है राजयोग, भगवान से नाता जोड़ना है, हम उसके वो हमारा, बहुत समीप, क्लोज रिलेशनशिप, इसकी ओर सबको बढ़ना है।
भाई साहब, ये जो सेमिनार चल रहा है, इसका जो टॉपिक है वो है इंस्पिरेशनल लीडरशिप एंड सेल्फ एम्पावरमेंट थ्रू सेल्फ एम्पावरमेंट। तो हमने यहाँ देखा है और आपके जीवन व्यक्तित्व को जो सुना है और पढ़ा है, तो हमें जानकारी मिलती है कि आप 18 ईयर्स की आयु में यहाँ समर्पित हुए, तब आपको किचन की सेवा दी गई, आप और आपके साथ शायद ही दो तीन सहयोगी रहे होंगे, और वो दिन 1968 का और आज 2023 का दिन, जब हम देख रहे हैं कि तीनों कैंपसेस में इतना बड़ा कारोबार चल रहा है, 100 से अधिक भाई बहन आपके नीचे कार्यरत हैं, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, समय से सारा प्रबंध हो रहा है, हम ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार की इंस्पिरेशनल लीडरशिप और सेल्फ एम्पावरमेंट के थ्रू आपका ये कार्य चल रहा है।
बात पर्सनल क्वेश्चन भी है और ये जानने योग्य क्वेश्चन भी है। हमारे यहाँ स्पिरिचुअलिटी में हम बहुत कुछ चीजें सीखे हैं। हमारे यहाँ अच्छे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी आते हैं, IAS अधिकारी भी आते हैं, आप सब भी बैठे हैं, पूछते हैं आप लोगों ने ट्रेनिंग कहाँ ली, MBA किया है, कुछ और ट्रेनिंग की है, कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ जो डेडिकेट करते हैं अपने जीवन को, वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आते हैं। आप हमारे किचन में जाए, कई लोग वहाँ MCOM हैं, ग्रेजुएट कई हैं, BTech कई हैं, कई मैकेनिकल इंजीनियर हैं, उन्होंने ही हमारे ये किचन वेल सेटअप किए हैं। तो शुरू में हार्ड वर्क था, 68 की बात है, ज़्यादा साधन संसार में ही नहीं होते थे उन दिनों। हमारी टीम बढ़ती गई और मैंने जो कुछ किया उसमें कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूं। अपने साथियों को प्यार देना, उनकी योग्यताओं को सम्मान देना, उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें योग्य बनाना, योग्य बनाकर उन्हें जिम्मेदारी देना, क्योंकि कार्य बढ़ता गया। किचन में केवल भोजन ही नहीं बनता, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, कोई स्टोर संभाल रहा, सब्जियां आ रही है एक दो ट्रक रोज, उनको लोड अनलोड, उनकी सफाई धुलाई कटाई, उनको संभालना, स्टोर्स बड़े बड़े, डाइनिंग बहुत बड़े बड़े, नीचे जो भाई साहब ने बताया 25,000 से ज्यादा लोग होते हैं, भीड़ रहती है। हमने लोगों को ये सिखाया कि तुम समस्याएं लेकर मेरे पास नहीं आओ, तुम्हें खुद समस्याओं का समाधान करना सीखना है, नहीं तो छोटी छोटी बात लेके मेरे पास आएंगे ना, ये नहीं हुआ, ये खत्म हो गया, ऐसा नहीं हुआ। आप सभी समस्याओं के क्रिएटर नहीं, उनको समाधान करने वाले बन जाओ। तो बहुत योग्य लोग हमारे पास आ गए। सबसे पहले बहुत मुझे किचन में वर्क करते 7-8 साल हो गए थे, तो हमारे पास एक व्यक्ति नागपुर से समर्पित हुए जो अभी भी है, MSc गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो। वो मेरे साथी हो गए, बड़ी भावना रही, हमने देखा ये वेल एजुकेटेड है, ये सीख रहा है, उसको बहुत सारी चीजें सिखा दी, उसने सीखी और हमने उसको एक अलग बड़ा काम दे दिया, वो उसमें संभालता रहा, हम निश्चिंत हुए। मेरा लक्ष्य ये रहता था कि लोगों को योग्य बनाओ, उनको जिम्मेदारी दो और खुद निश्चिंत हो जाओ। भाई जब कोई समस्या है तब मेरे से राय कर लेना, बाकी फ्रीली विद फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको ये काम करने हैं। तो हमारे काम सबसे सुंदर चलने लगे। अभी हमारे पास 200 तो डेडिकेटेड लोग भी हैं, नीचे और ऊपर सब जगह। और जब बड़े बड़े प्रोग्राम चलते हैं तो बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं सेवा करने, वो 700-800 हो जाते हैं। सभी बहुत आनंद लेते हैं, कोई थकता नहीं, क्योंकि समर्पण भाव से सभी लोग काम करते हैं। तो एक दूसरे को एप्रिशिएट करना, अपने डिपार्टमेंट में बहुत पीसफुल, लविंग, बहुत अपनेपन का माहौल बनाकर रखना बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है। सीखा और सिखाया हमने सबको। मैं एक छोटी सी बात कहूं, नीचे हमारा बहुत बड़ा किचन रिन्यू हो रहा था, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी उसको हम सेट कर रहे थे, तो बाहर टीन सेट लगाकर किचन बनाया गया था। उसमें कुछ ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, कुछ भी नहीं था, टेम्परेरी बनाया गया। 28,000-30,000 तक लोग आए जो 10 दिन रहते थे वहां, और तीनों टाइम का भोजन, चाय पानी दूध दही सब होता उनका। मैंने उन सबको कहा कि भाई अब सब आप थक गए होगे, नंबर वार दो दो दिन की छुट्टी रख लो, ऊपर घुमाओ। उन्होंने कहा हम तो थके ही नहीं। मैंने भी देखा कोई थका नहीं था, क्योंकि जब बहुत अच्छी स्पिरिचुअल पावर मनुष्य के पास रहती है, जब वो बहुत खुशी खुशी से वर्क करता है, जब उसके ऊपर कोई प्रेशर या दबाव नहीं रहता है, तब उनकी एफिशिएंसी डबल हो जाती है। और हमने ये महसूस किया, जो बहुत अच्छी एक रिसर्च थी, कि अगर कर्म क्षेत्र पर वाइब्रेशंस बहुत सुंदर बना दिए जाए तो कभी कुछ प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, क्योंकि वहां बहुत प्रॉब्लम्स आने का संभावना रहती, आ जाती है कभी कभी। गर्म पानी किसी के ऊपर गिर गया, गर्म पानी माना उबलता हुआ, ऐसा केस साल में दो साल में कोई एक होता है, किसी गलती से कोई स्लिप होकर गिर गया, उसको चोट लग गई। खाना बहुत बनता है, कभी 5,000-7,000 का बच जाए, कभी 5,000-7,000 का कम हो जाए, ये नहीं होता है। तो बहुत अच्छा एक प्रबंध करके हम लोग वहां रखते हैं, क्योंकि लोग रात को 12 बजे तक भी आते रहते हैं, ट्रेन से आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो हम लोग ऐसी तैयारी रखते हैं, नीचे ये कार्य ज्यादा चलता है शांतिवन में, हम ऐसी तैयारी रखते हैं कि डाइनिंग हॉल से ऑर्डर आया कि भाई खाना कम हो रहा है, 15 मिनट में 2,000 का भोजन बन के चला गया। तो बहुत अच्छा कार्य चलता है, इसमें हमारे साथ ईश्वरीय शक्तियां भी काम करती हैं। सभी लोग मेडिटेशन करते हैं, आपस में बहुत प्यार से अपनेपन से रहते हैं। आपको बता दें हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो डेडिकेटेड हैं, नीचे ऊपर 2,000 लोग तो डेडिकेटेड हैं, किसी को ये पता नहीं कौन किस धर्म का है और कौन किस जाति का है, क्योंकि हमारे यहाँ वो चर्चा ही नहीं है। आज शांतिवन से मुझे एक फोन आया, वो कॉलर पे आ जाता है ना नाम, ट्रू कॉलर
पे,
तो बुराउद्दीन। मैं सोचा किसी बाहर से फोन आते रहते, मुझे पाकिस्तान से भी आते हैं समस्याओं के, तो बांग्लादेश से भी आते हैं। मैंने कहा किसी का बाहर से फोन आया था। मैंने कहा बोलो भाई क्या प्रोग्राम है। हाँ क्या, क्यों फोन किया। कहा मैं बुरहान बोल रहा हूँ शांतिवन से, मैं इस डिपार्टमेंट में समर्पित हूँ और आपको अगले सैटरडे को एजुकेशनिस्ट के लिए एक प्रोग्राम ऑनलाइन देना है। मैं कहा ठीक है। क्या यहीं रहते हो, समर्पित हो। कि हाँ मैं समर्पित हूँ। क्या मुस्लिम कम्युनिटी से आए हो। कि हाँ। पर हमारे यहाँ कोई चर्चा ही नहीं होती। अगर वो न बताता तो मुझे कोई पता नहीं होता, न हम ऐसा एटीट्यूड रखते किसी के लिए कि किसने बता दिया, मैं तो इस जाति से हूँ, मान लो बता भी दिया तो हम उसे उस नज़र से देखने लगे। हमारे यहाँ स्पिरिचुअल दृष्टि है, सब आत्माएं हैं, सब भगवान के बच्चे हैं। एक बात मुझे कहनी छूट गई थी जो पीछे कहा था, हमारे दुख हमारी परेशानी पूर्व जन्मों के कारण ही है, सारी पूर्व जन्मों के कारण नहीं होती। वर्तमान सोच, वर्तमान कर्म, इनके कारण भी समस्याएं पैदा होती है। मैं एक छोटी समस्या सुना देता हूँ। अभी चार दिन पहले मैं कहीं से आया, दो लेडी मुझसे मिलने आई, कहा हमारी एक समस्या हो गई है, समाधान चाहिए। क्या? मैं टीचर हूँ, शादी हुए 2-3 साल ही हुए थे, मेरे को एक लड़की ने जन्म लिया, सास ने मुझे घर से निकाल दिया, लड़की को जन्म क्यों दिया? सोच लें आप। मैंने कहा तुमने बताया नहीं कि जन्म देना मेरे अधिकार में थोड़ा ही है? कहा नहीं, वो नाराज हो गई मेरे से, हमें तो लड़का चाहिए था, लड़की को जन्म क्यों दिया? तो मनुष्य का सोच, उसके छोटे विचार, उसका स्वार्थ, ये अनेक समस्याओं को, कष्टों को जन्म दे रहा है। तो हम सब इससे बचेंगे तो जीवन कष्टों से पार सुखों का भंडार बन जाएगा। नेक्स्ट
भाई साहब, जब हमारे डेलीगेट्स जो यहाँ आए हैं और पहली बार आए हैं, हमारी संस्था को देखते हैं और इसके इतने बड़े रूप को देखते हैं, इसको इतना वेल मॉडर्नाइज्ड रूप में देखते हैं, और ये भी जान रहे हैं कि यहाँ किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाती है, ये जो कोर्स चल रहा है यहाँ या यहाँ जो भी कोर्सेज चलते हैं अलग अलग विंग्स के, कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, तो फिर ऐसा बड़ा कार्य किस प्रकार से फाइनेंस हो रहा है, कैसे ये सारी गतिविधियां चल रही हैं, इसके पीछे क्या प्रेरणा स्रोत है, तो उसकी भी वो जानकारी जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज चाहते हैं।
बहुत तरह के लोग यहाँ आते हैं, संसार से ही आते हैं, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। भिन्न भिन्न क्वालिटी के लोग, अलग अलग एरिया के लोग, कोई धनवान, कोई गरीब, कोई साहूकार, कोई कमजोर, कोई निर्धन, कोई पढ़ा लिखा, कोई बिना पढ़ा लिखा, सब आते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ कोई फीस नहीं है, न किसी से कुछ मांगा जाता है। हाँ, जब पार्टियाँ बाहर से आती हैं तो हमारी बहनें उनका सब इंतजाम करती हैं, तो उनसे ट्रेन टिकट, उनको घुमाना है ऊपर नीचे कहीं भी, उसका खर्च मात्र 3,000 रुपये लेते हैं, उसमें सब उनका इंतजाम हो जाता है। लेकिन आप जानते हैं भारतवर्ष में धर्म के कार्यों में धन की कभी कमी नहीं पड़ती है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे पास एक व्यक्ति आता है जो बहुत शराब पीता था, और उसका एक मास में शराब पर 4-5 हजार रुपये जाता था। अब उसने शराब छोड़ दी है, उसका जीवन व्यसनों से मुक्त हो गया, वो इस मार्ग पे चल पड़ा है। तो जो 5,000 रुपये खर्च करता था स्मोकिंग में, ड्रिंकिंग में, वो सोचता है मैं 2,000 तो हर मास दे दूं, बस इस तरह ये फंड आता है। हमारे यहाँ आने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। मैं आपको छोटी सा एग्जाम्पल दे दूं। हमारा ज्ञान सरोवर बना, गवर्नर चेन्ना रेड्डी थे राजस्थान के, यहाँ बीजेपी सरकार थी, वो बाबरी मस्जिद के कारण भंग कर दी गई असेंबली, गवर्नर रूल आ गया। वो गवर्नर हमारे यहाँ बहुत आते थे, उन्होंने ये सब कराया। दादी प्रकाशमणि चीफ थी, उनसे पूछा कितने समय में आप ज्ञान सरोवर बना के तैयार कर दोगे। उन्होंने कहा 1.5 से 2 साल के बीच, जबकि इसको तोड़ने में ही 6 मास गुजर गए थे। ये ऐसी जगह थी जहां एक कमरा भी बनाना मुश्किल हो रहा था। अभी हम हॉल में बैठे हैं, बड़े किचन हैं, आप ये देखते हैं बड़े बड़े भवन हैं, एक कमरा भी नहीं बन रहा था। मड हाउस बनाए गए थे, इधर पीछे बने, जर्मन के इंजीनियर्स आए कि यहाँ केवल मड हाउस बना दें, मिट्टी के घर जिसमें लोग आकर राजयोग की साधना करें। लेकिन फिर हमारे आर्किटेक्ट आए अहमदाबाद से, उन्होंने कहा नो, पहले सड़कें बनाई जाएं। सड़कें उन्होंने नक्शा बना दिया, सड़कें बनी, और सड़कें बनते ही दिखने लगा एक बिल्डिंग यहाँ बन सकती है, दूसरी अप्रोच रोड हो गई। तो गवर्नर चेन्ना रेड्डी ने दादी से पूछा कि आपके पास पैसा कहाँ से आएगा। अब उसी उत्तर से आप समझ जाएंगे कि यहाँ ये कैसे कार्य चलता है। दादी जी ने उत्तर दिया, हमने सबको, अपने भाई बहनों को कह दिया है कि रोज ज्ञान सरोवर के निर्माण के लिए 1 रुपया आपको देना है। देखो 1 रुपया, और 1 रुपये से 1.5 साल में, 2 साल में ये इतना बड़ा ज्ञान सरोवर बन गया था, क्योंकि देने वाले 5 लाख थे। अब उनमें कोई 1 रुपया देगा तो कोई 10 डालने वाले भी थे, कोई 100 डालने वाले भी थे, कोई 1000 देने वाले भी थे। तो इस तरह यहाँ ये फाइनेंशियली जो अरेंजमेंट है सब किया जाता है। हमने देखा कोई कमी हमें नहीं रही है, मैं तो यहाँ 55 ईयर्स से हूँ, सब कुछ अपने हाथों से बनते बनाते अपनी आंखों से देखा है। मैं और अशोक गाबा जो आपके ही फील्ड के हैं, दो ही यहाँ आए थे, क्योंकि ये ऐसी जगह थी यहाँ कोई आ ही नहीं सकता था, रास्ते ही नहीं थे, यहाँ भेड़िए और भालू ही रहते थे, बहुत मुश्किल काम था, सांप तो बहुत ज़्यादा थे। लेकिन जब ईश्वरीय कार्य चला तो वो तेजी से चला और यहाँ हम लोग आप लोगों की सेवा कर सके, इस तरह से आर्थिक जो प्रबंध है यहाँ का किया जाता है।
भाई साहब, यहाँ पे हमें सहज राजयोग सिखाया जा रहा है, सहज अर्थात इजी राजयोग, पर अभी 3 दिन हुए हैं और लोगों ने मेडिटेशन शुरू किया है। एक ही सवाल है कि मेडिटेशन में मन को कंसंट्रेट करना बड़ा ही मुश्किल हो गया है, तो कहा तो जा रहा है सहज राजयोग, पर ये सहज अभी लग नहीं रहा है, तो किस विधि से हम इसको सहज कर सकते हैं, और फौजी जीवन में कैसे इस राजयोग का हम ऐसे उपयोग करें जिससे हमारा फौजी जीवन बिल्कुल बैलेंस और सफल विजयी हो।
कितने क्वेश्चन और हैं? नहीं तो मैं इसका डिटेल दूं, इसको डिटेल करूं, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं 3 मिनट में नहीं देना चाहता। ये सहज राजयोग इसका नाम इसलिए है कि भारतवर्ष में जो योग पद्धति प्रचलित थी वो बहुत कठिन थी। ये योग नहीं रामदेव जी वाला, ये तो योग आसन है, प्राणायाम है, ये अलग चीज है। योग का अर्थ होता है आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, मिलन, कॉन्टैक्ट, कम्युनिकेशन। महर्षि पतंजलि ने अब से 2500 वर्ष पहले, 2400 वर्ष पहले योग दर्शन एक फिलोसॉफिकल बुक लिखी और उसमें योग के ये 8 अंग बना दिए जो रामदेव जी ने 2 ले लिए हैं, आसन और प्राणायाम। उसमें यम और नियम भी 2 हैं जिसमें 5-5 सुंदर धारणाएं हैं, वो उन्होंने टच नहीं की। बाकी साधनाओं की पद्धति है आगे की, तो वो कठिन काम था और केवल सन्यासियों तक सीमित था। 1000 सन्यासी में भी कोई 2-4 उसको कर पाते थे, और ये राजयोग स्वयं भगवान ने सिखाया, सहज ज्ञान दिया। आपने सवेरे की क्लास में आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान और योग की विधि सुन ली होगी, वो कठिन नहीं है कि हमें घंटों बैठना है, हमें ध्यान लगाना है, हमें बहुत स्ट्रिक्ट होना है, ऐसा कुछ नहीं। ये चलते फिरते भी राजयोग किया जा सकता है, ये खाते पीते आपका जो भी लाइफ है, आप पुलिस में हैं, बीएसएफ में हैं, मिलिट्री में हैं, अधिकारी हैं, बिल्कुल छोटे पद पर हैं, सभी लोग इसको कर सकते हैं। मैं कुछ विधि बता रहा हूं आपको और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मन का भटकना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि मन तो भटक रहा है। सोचने की बात यह है कि मन आपे ही भटक रहा है या हम उसको भटका रहे हैं। मेरे साथ चिंतन करें आप। एक व्यक्ति बहुत पीसफुल घर में बैठा है, उसने अपना मोबाइल खोलना शुरू किया, व्हाट्सएप पे पहला कुछ देखा, उससे उसके विचार चलने लगे, दूसरा देखा दूसरे विचार चलने लगे, तीसरा चौथा पांचवा सबके विचार चलने लगे, और ये विचार इस तरह धीरे धीरे अनकंट्रोल्ड हो गए। अब सहज राजयोग की प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? चाहे आपकी कोई भी लाइफ हो, सवेरे से कैसी भी दिनचर्या शुरू होती हो, एक तो मैंने कहा सवेरे उठते ही सुंदर विचारों से अपने को चार्ज कर देना रोज। देखो वो सुंदर विचार क्या हैं। पहले अपने परमपिता को गुड मॉर्निंग करना और एक सुंदर फीलिंग लेना, उसका आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर आ गया है। पहले आपको ये कल्पना लगेगी, लेकिन धीरे धीरे ये रियलिटी हो जाएगी और आपको महसूस होगा सचमुच सुप्रीम का हाथ मेरे सिर पर आ गया। ऐसे अपनी दिनचर्या की शुरुआत करना, तो आंख खुलते ही पहले 5-7 मिनट सुंदर शुरुआत के होने चाहिए। मैं बहुत भाग्यवान हूं, संकल्प करना, मैं बहुत खुशनुमा हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं बहुत शांत हूं। आपको बहुत क्रोध आता हो, मैं क्रोध से मुक्त हूं, मेरे परिवार में बहुत प्यार है, ये संसार भगवान की रचना कितनी ब्यूटीफुल है, मैं इसमें एक्टर हूं, आई हैव टू एंजॉय माई पार्ट। ऐसा चिंतन करना सवेरे उठते, अपने को एक संकल्प दे देना, मैं आत्मा इस तन में बैठी हूं दोनों भ्रकुटियों के बीच में, अंदर ब्रेन में, अपने को विजुअलाइज करना थोड़ा सा। ये विजुअलाइजेशन बहुत बड़ी सुंदर टेक्निक है। आप आत्मा का अपने मन में चित्र बना लो, मैं आत्मा कैसी हूं, पॉइंट, उसे चारों एनर्जी फैल रही है, किरणें फैल रही हैं, पॉइंट, किरणें फैल रही हैं। एक टेक्निक, अब दो टेक्निक आपके सामने हैं। बुद्धि से हम विजुअलाइज करते हैं, हमारे पास दो ये चीजें हैं, मन और बुद्धि। बुद्धि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, बुद्धि थर्ड आई ऑफ विजडम, और मन पावर ऑफ थॉट। तो बुद्धि से आप आत्मा को विजुअलाइज करो, मन उस पे सोचने लगेगा। जो चीज हम विजुअलाइज करते हैं, मन उस पे सोचने लगता है। आप देख सकते हैं, जो चीज आप देखते हैं, आप कहीं जा रहे हैं, जो जो चीजें देखेंगे उस पे सोचते सोचते आगे बढ़ेंगे, तो विजुअलाइजेशन पर अपनी मास्टरी करेंगे, एक चीज। दूसरा, मन के बारे में एक बहुत सुंदर सीक्रेट आप सुन लें। मैं ये बहुत सुना रहा हूं और जो लोग इसको पिकअप कर लेते हैं उनको बहुत फायदा हो जाता है। मन का काम है सोचना, ये तो हम जानते हैं, कॉमन बात है। मन का काम है सोचना, वो हजारों साल से सोचता आ रहा है। हमें पता थोड़ा ही आज हमने क्या क्या सोच लिया। आज तो आप यहाँ ज्ञान सुन रहे हैं, सोच आपका कम है, नहीं तो मनोवैज्ञानिकों ने जो सर्वे किए, जो रिसर्च की, उसमें पाया एक एक मनुष्य के मन में रोज 50,000 थॉट्स पर डे, रोज। दूसरों का सर्वे किया, किसी के मन में 40,000 थॉट्स पर डे, 45,000 थॉट्स पर डे। इतने विचार चल रहे हैं मनुष्य के मन में, हमें पता थोड़ा ही हमने आज क्या क्या सोच लिया। अब टेक्निक सुन लें, मन का काम है सोचना। या तो बहुत अटेंशन से सुनेंगे, या तो मन को हम थिंकिंग दें, अदरवाइज मन खुद थिंक करेगा। मन जब खुद थिंकिंग करेगा तो क्या क्या करेगा वो उसके हाथ में है, अब कहां कहां भागेगा वो। और हम उसको थिंकिंग देंगे, थॉट्स देंगे, तो उनमें वो ठहरने लगेगा। ये है मन की कंसंट्रेशन बढ़ाने की दो विधियां। इसलिए जब सवेरे हम राजयोग मेडिटेशन करते हैं तो आपने देखा होगा आपको कुछ थॉट्स दिए जाते हैं, थॉट्स एंड विजुअलाइजेशन। परमात्मा को विजुअलाइज करना, आत्मा को विजुअलाइज करना, दोनों के बारे में चिंतन करना, अभ्यास करते करते धीरे धीरे मन कंट्रोल होने लगेगा। फिर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी कंसंट्रेशन बहुत सुंदर होती जाएगी। आप इसकी प्रैक्टिस कर्मों में कर सकते हैं। मान लो आप अपने घर से अपने ऑफिस तक जा रहे हैं, आपको 5 मिनट लगा, मैं कम से कम समय बता रहा हूं, 10 मिनट लगा, 15 मिनट लगा। आप बहुत अच्छा अभ्यास कर लेना, ये बहुत सुंदर अभ्यास है राजयोग का। शिव बाबा को विजुअलाइज करना, ऊपर ऊपर आपसे परम धाम में ना हो, इधर ही ऊपर विजन बनाना, और उसकी किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं, शक्तियों की किरणें, थोड़ा थोड़ा भी 10-10 सेकेंड उसके वाइब्रेशंस मुझ पर पड़ रहे हैं, कभी शांति के, कभी शक्तियों के, कभी पवित्रता के। प्रैक्टिस विल मेक इट इजी। आप कार में बैठकर जा रहे हैं तब आप थोड़ा सा बीच बीच में आधा आधा मिनट भी अभ्यास कर लें, कभी अभ्यास कर लें, मैं आत्मा इन आंखों से देख रही हूं, दैट्स इट, इतना ही 10 सेकंड का काम, मैं आत्मा हूं अंदर, आंखों से बाहर की दुनिया को देख रही हूं, तो सोल कॉन्शियसनेस बढ़ती जाएगी, विचार कंट्रोल में होते जाएंगे, परमात्मा से जुड़े रहेंगे। आप उससे बातें भी कर सकते हैं, ये एक बहुत सुंदर विधि और बहुत सुंदर आपको अनुभूति होगी कि भगवान मेरा परम पिता है, उसको आप अपना गुड फ्रेंड बना लो यहां से। ही नॉट ओनली फादर बट माई गुड फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड। उससे बातें करते रहो, बीच बीच में अपनी बातें करते रहो, केवल समस्याएं नहीं सुनानी, अच्छी बातें भी करते रहो, उसको शुक्रिया करते रहो, तुमने हमें बहुत सुंदर जीवन दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह हम सारा दिन उससे जुड़े रह सकते हैं। उससे जुड़े रहना ही राजयोग मेडिटेशन है। जब आप और आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी सिंपल सिंपल टेक्निक आपको मिलती रहेगी। एक अभ्यास हम करते कराते हैं यहाँ, स्वमान। मैं आत्मा तो हूँ पर मैं कौन सी आत्मा हूँ, कितनी मेरे अंदर पावर्स हैं, कितनी शांति है, कितनी प्योरिटी है, उसकी अवेयरनेस दी जाती है। तो आप इसको इजी बना सकते हैं और बहुत एंजॉय कर सकते हैं। ओके,
अभी थैंक यू भाई साहब। अभी हम आप लोगों से सवाल पूछना चाहेंगे, अगर आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है तो मैं निवेदन करूंगा कि माइक, कॉर्डलेस माइक दे सकते हैं। आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है, हाँ प्लीज आप खड़े जाएं, चाहे तो आप आगे आ सकते हैं, बहन जी भी हैं। जस्ट अ मिनट, आप बस वहां पे रहिएगा, पहले बहन जी का पूछते हैं फिर आपका, समय कम है, हम दो सवाल लेंगे, बहन जी को दे दीजिए। आ जा, आ गया, बहन जी आ जाइए।
ओम शांति भाई जी।
हाँ, क्लास की तरफ हूँ करके आप बोल सकते हैं।
हमने तीन लोगों के लोक के बारे में अभी जानकारी प्राप्त करी है, स्थूल वतन, सूक्ष्म लोक और परम लोक
जी।
तो मुक्ति और जीवन मुक्ति ये कहाँ होती है और इसमें क्या अंतर है?
इन्होंने मुक्ति और जीवन मुक्ति के बारे में प्रश्न पूछा है। ज्ञान सुनते आपने सुना होगा तीन लोकों की चर्चा की गई है, उसमें सबसे ऊपर जो परब्रह्म है वहाँ जब आत्मा है तो वो मुक्ति की अवस्था है। आप सब जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, किससे मिलो, क्या चाहिए, मुक्ति। हम पूछा करते हैं जीवन से परेशान हो गए हो क्या, जो मुक्ति चाहिए, ये भी बात हो गई। सन्यासियों का लक्ष्य होता है मुक्ति पाना, पर जब आत्मा परम धाम में है, आत्मा कोई पार्ट प्ले नहीं कर रही है, वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में है, उसको मुक्त अवस्था कहते हैं। और जब आत्मा वहां से सतयुग में आ जाती है पार्ट प्ले करने, तो सतयुगी जीवन को जीवन मुक्त अवस्था कहा जाता है, क्योंकि वहां आत्मा दुखों से, परेशानियों से, अशांति से, बंधनों से सबसे मुक्त है। तो परम धाम में है जीवन से मुक्त और सतयुग में है जीवन में मुक्त, ये दोनों का अंतर है। यस प्लीज
आइए भाई।
ओम शांति।
अपना परिचय देंगे।
मैं जितेंद्र कुमार, इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार, एनएसजी से हूँ।
एनएसजी
सर। भाई जी, मेरा प्रश्न है कि जैसा कि हमने यहाँ सीखा कि जैसी आत्मा इंसान के अंदर होती है वैसी ही सभी पशु पक्षियों में, जीव जंतुओं में होती है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इंसान में तो बुद्धि होती है, वो बुद्धि के माध्यम से ईश्वर से, योग के से, ईश्वर से जुड़ सकता है और उस परम सुख को प्राप्त कर सकता है, तो बाकी पशु पक्षी उनमें भी सेम आत्मा है, वो आत्मा परम सुख तक कैसे पहुंच पाएगी?
पशु पक्षियों में सिमिलर आत्मा नहीं होती, अंतर होता है। वैसे ये अंतर है मन, बुद्धि और संस्कारों का। आपको यहाँ ज्ञान दिया गया आत्मा में तीन शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, सबके अलग अलग। अब मैं उदाहरण ले रहा हूं गाय और भैंस, दो पशु हमारे सामने हैं, कुत्ता और बिल्ली, दो छोटे पशु हमारे सामने हैं। आप देख सकते हैं भैंस की बुद्धि और गाय की बुद्धि दोनों अलग अलग, दोनों के संस्कार अलग अलग। रही बात परमात्मा को याद करने की, ये जीव जंतु परमात्मा से जुड़े हुए नहीं होते, ये मनुष्यों से जुड़े होते हैं और मनुष्यों के वाइब्रेशंस का इफेक्ट ही इन पर पड़ता है। आप कभी ड्राइविंग करते हो तो आपने देखा हो गाय खड़ी हैं, आप उन्हें हॉर्न दो तो लेफ्ट साइड में एक तरफ हो जाएंगी, भैंस को हॉर्न दो, पता है ना भैंस के आगे बीन बजाने से क्या होता है, पहले तो बहुत देर में हॉर्न देने के बाद उसको समझ में आएगा कुछ हुआ है, फिर पीछे मुड़ के देखेगी क्या हुआ है, कौन डिस्टर्ब कर रहा है, फिर इच्छा हुई तो हट गई, नहीं तो आप ही हटो। सबके संस्कारों में, मन और बुद्धि में अंतर है, यही अंतर है सभी आत्माओं में, ये अंतर ही डिफ्रेंशिएट करते हैं सबको। मनुष्य की आत्मा सुपर आत्मा होती है, जीव जंतुओं की आत्मा लो क्वालिटी की होती है, ये अंतर होता है। आइए
आइए भाई साहब, अपना परिचय दीजिएगा।
नमस्कार सर, मैं संदीप कुमार बीएसएफ से हूँ। सर कल जैसे हमें बताया गया था कि जो ओम का उच्चारण है ऐ ऊ और मै से ही होता है, लेकिन यही चीज अलग अलग चीजें अलग अलग बताते हैं। जैसे जो ईसा फाउंडेशन है वो कहता है कि आ ओ और मै है, तो हम किस पर विश्वास करें?
आप केवल इस पर विश्वास करो कि मैं आत्मा पीसफुल हूँ। सब जितनी भी व्याख्याएं हैं इसमें समा जाएंगी। ये तो देखो शब्द भेद होता है, और ये शब्द क्योंकि संस्कृत से आए हैं और संस्कृत के आचार्यों ने इनकी व्याख्याएं भिन्न भिन्न तरह से कर दी हैं, इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं।
दूसरा सर, अभी हम कहते हैं कि हर एक इंसान के अंदर एक आत्मा है, लेकिन जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं वो तो आत्मा का कॉन्सेप्ट को मानते हैं नहीं, वो तो सिर्फ सिंगल लाइफ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं, तो उनके लिए अभी क्या चीज होगी?
मानते नहीं, मैं इसमें दूसरा शब्द कहता हूँ, जानते नहीं है। अगर मनुष्य जान ले तो मान लेगा। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, मेडिकल साइंस वाले बहुत सारे यही मानते हैं कि ब्रेन इज एवरीथिंग, बाकी कुछ नहीं है। मेडिकल डॉक्टर्स ने ही, साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स ने ही सिद्ध कर दिया कि हाइपोथैलेमस के नीचे एक पॉइंट ऑफ एनर्जी है जिससे कमांड मिल रहा है ब्रेन को, तो सभी ने मान लिया। तो जब मनुष्य किसी चीज को जान लेता है तब मानना इजी होता है। अब आपने जान लिया तो आप मान भी लेंगे, ठीक है ना?
दूसरा सर, एक चीज है कि हम बचपन से सुनते आए हैं कि कण कण में भगवान है, हर एक इंसान के अंदर भगवान है। कल ये बताया गया कि नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, एक ही वो पर ब्रह्म है।
ये
तो मेरा सवाल ये है कि हम कैसे मान लेंगे कि आप जो बता रहे हो वही सही है, जो हमारे माता पिता ने जिन्होंने बताया वो नहीं है, हम कैसे मान लें इस चीज?
अब देख लीजिए, आप खुद सोच लीजिए, जो आतंकवादी हैं जिनसे आप सबको संघर्ष करना पड़ता है, क्या उनके अंदर भी भगवान है? अगर भगवान होता तो उसके कुछ वाइब्रेशंस उनके अंदर होते ना, कुछ विवेक होता। ये जो कण कण की बात है, ये कण कण में एनर्जी होती है, और स्कॉलर्स ने मान लिया था कि ये एनर्जी भगवान की एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी प्रकृति की एनर्जी है। देखो, एक पेड़ है, उसमें भी एनर्जी है, वो भी बढ़ता घटता सूखता फलता फूलता है, तो ये एनर्जी अलग अलग है, ये भगवान की एनर्जी नहीं है। इसलिए कण कण में भगवान नहीं, इस शरीर में आत्मा और परमात्मा सभी आत्माओं का पिता है। और आप स्टडी कर लेंगे इसकी थोड़ी।
सर, ये जो आत्माएं हैं सभी मनुष्य में है, उसी परमात्मा की कनेक्टिविटी में सारी चीजें हैं। तो फिर जैसे अभी गाय कोई आतंकवादी बनता है, कोई एक सोल्जर बनता है, कोई भिखारी बनता है, कोई अमीर बनता है, कोई अपंग बनता है, फिर ये चीजें किस लिए?
सभी उससे कनेक्टेड तो है नहीं, थे, अभी उससे डिसकनेक्टेड हो गए, और ये अपने अपने कर्मों के अनुसार, अपने अपनी बुद्धि के अनुसार, थोड़ा थोड़ा अपने भाग्य के अनुसार भिन्न भिन्न स्टेटस सबको प्राप्त होते हैं। अब थोड़ी और जानकारी कर लेंगे, अभी तो शुरू किया है ना, और स्टडी करेंगे सब बातें।
वन वीक कोर्स के साथ सब क्लियर होगा। थैंक यू
सर। नहीं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके, वी अप्रिशिएट यू।
थैंक यू,
बहुत तेज हो, वी अप्रिशिएट यू, बहुत अच्छा चिंतन
भाई साहब। एक सवाल ये था, जो अमूमन यहाँ हमारे डेलीगेट्स हैं वो पेरेंट्स हैं और सबके बच्चे हैं, और अभी इन दिनों इनको एक परेशानी ये देखने को मिल रही है कि बच्चों का मोबाइल के साथ बहुत एडिक्शन है, और वो चीज़ उन्हें परेशान कर रही है, और थोड़ा सा घर में तनाव का माहौल सा बन जा रहा है। तो ऐसे में राज्यों की किस विधि द्वारा इसका समाधान निकाला जाए?
आपको सुनाई पड़ रहा है जो हम बोल रहे हैं, क्योंकि ऊपर टीन है, बारिश आपका स्वागत ज्यादा कर रही है। आज मोबाइल कल्चर आ गई है, करें भी क्या, माताओं ने बच्चों को खिलौने ही मोबाइल दे दिए हैं, अब वो शुरू से ही मोबाइल से खेल रहे हैं, तो मोबाइल उनका एडिक्शन बन ही गया है। जो रही सही कमी थी वो कोरोना ने पूरी कर दी थी, पढ़ाई खत्म हो गई तो घर में ही पढ़ने लगे। अभी आप सबको मेडिटेशन सीख कर अपने बॉल को इतना इफेक्टिव बनाना है कि बच्चे आपके आज्ञाकारी बन जाएं। काम थोड़ा कठिन है, क्योंकि मैं ऐसे भी सुनता हूँ कि माँ ने बच्चे से मोबाइल छीन लिया तो बच्चे ने घर में तोड़फोड़ कर दी, मोबाइल देना ही पड़ा उसकी शांति के लिए। तो एक कल्चर ही आ गई है, कुछ दिनों में ये कल्चर बदल जाएगी, लेकिन मेडिटेशन से आप अपनी वाणी को बहुत इफेक्टिव बना सकते हैं, और ऑर्डर से नहीं, बहुत प्यार से। मैं आपको एक सबकॉन्शियस माइंड की विधि बता रहा हूँ, क्योंकि बाहर बारिश तेज है, आप तो जा नहीं सकेंगे अभी। सुन ले आप, बहुत ध्यान से सुनेंगे। सवेरे जब बच्चे सोए हों, तब आप 5 मिनट मेडिटेशन करके उन्हें थोड़े अच्छे वाइब्रेशंस देना। जैसे मुख से उनसे बात करते हैं, अब मन से बात करना, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम बहुत समझदार हो, मोबाइल ज्यादा नहीं देखा करते, पढ़ाई पे ध्यान दिया करते हैं, अब मोबाइल कम कर दो। आपको पता हो, जब बच्चे सोए हुए हैं तब उनका सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव है, और आप जो थॉट उन्हें दे रहे हैं वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्टली एंटर कर रहा है। सेम टाइम एवरी डे, कम से कम 7 दिन ये प्रयोग कर लेना, वही विचार रोज देना, आपके बच्चों में सुधार आ जाएगा। ये प्रयोग हमने बहुतों से कराए हैं, क्योंकि ये समस्या तो रोज आती है।
आइए माता जी।
ओम शांति। भाई सवाल पूछू मैं?
नजदीक ना।
मन अहन बो नहीं हो रहा है, अब दो पानी तो आदर करके है और प्यादे और उससे बीमारी तय राम मिलागा। मन कहीं भी नहीं गए, हन बो हुआ है।
भाई माता जी अपने अनुभव सुना रही हैं, हम एक टेक्निक सिखाते हैं पानी को चार्ज करके पीना। तो इन्होंने जब पानी चार्ज करके पिया, इनको कई फायदे हो गए। थैंक यू माता जी, बहुत
अच्छा।
ओम शांति। पानी चार्ज करने की विधि मैं आपको बता देता हूँ। बीमारियों में इसका प्रयोग हम कराते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में 70% पानी होता है, और वो पानी टेंशन के कारण, मनोविकारों के कारण, निगेटिविटी के कारण गंदा हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है। पानी चार्ज करके पिएंगे तो वो पानी शुद्ध हो जाएगा और अनेक बीमारियां भागेंगी। और उसकी विधि है, पानी पर नजर डालकर, पानी पर दृष्टि डालकर 7 बार संकल्प करेंगे, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो वो वाइब्रेशंस आंखों से पानी में समा जाएंगे, वो अंदर जाएंगे और बहुत बड़ा काम करेंगे। अभी समाप्त कर दें भाई,
एक लास्ट क्वेश्चन। भाई साहब, हमारे बीच में जो भी आए हैं वो फौजी हैं, फोर्सेस में हैं, और 200 से अधिक लोग ड्यूटी पे आए हैं, अलग अलग फोर्सेस के हैं, अलग अलग धर्मों से हैं। अमूमन जब इनके जीवन में तनाव आता है, जो अभी तक की इनकी ड्रिल है, अलग अलग ड्रिल से हरे की, कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, सोचते हैं कि मेरा तनाव कम हो जाएगा। कुछ लोग ग्लास में थोड़ा सा ड्रिंक ले लेते हैं कि तनाव कम हो जाएगा। तो आज जब ये 3 दिन यहाँ रह रहे हैं और यहाँ की जीवन शैली को देख रहे हैं, तो शायद उनके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि राजयोग कैसे हमें तनाव मुक्त रहने में मदद कर सकता है।
देखिए, स्मोकिंग करने से या ड्रिंकिंग करने से ब्रेन की कुछ शक्तियां काम करना बंद कर देती है, तो मनुष्य को लगता है तनाव चला गया, लेकिन वो फिर आ जाएगा। इसलिए स्मोकिंग या ड्रिंकिंग कोई समाधान नहीं है तनाव का। तनाव होता है ज्यादा सोचने के कारण, तनाव होता है जल्दी जल्दी परेशान होने के संस्कार के कारण। बहुत सारे कारण तनाव के हैं। अगर आप पॉजिटिव चिंतन करना सीख लें, अगर आप बहुत इजी और लाइट रहना सीख लें और मेडिटेशन से अपनी इनर पावर को बढ़ाएंगे, तो आपको बड़ी बात भी छोटी लगेगी, बातें तो सबके सामने आती हैं संसार में, बड़ी बातों को छोटा करके लेना, बहुत इजी नेचर रखना, सवेरे से ही खुशी अपने अंदर भरना, ये सब तरीके होंगे तनाव को कम करने के। बाकी तनाव में रहने की आदत खत्म कर दें। आप एक संकल्प में दे रहा हूं सवेरे उठ के कर लिया करना, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं भगवान की संतान हूं, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आपको तनाव को जीतने में इस विचार से बहुत मदद मिलेगी।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। एक बार हम जोरदार तालियों के साथ भाई साहब को धन्यवाद करेंगे। अमूमन हमारे चैनल्स जो पीस ऑफ माइंड और अवेकनिंग है, भाई साहब का एक रेगुलर एपिसोड आता है समाधान, जिसमें कई प्रकार के प्रश्न होते हैं जिनका समाधान दिया जाता है। तो आप भी जब कभी पीस ऑफ माइंड या अवेकनिंग चैनल देखें तो आप देखेंगे कि भाई साहब के कई सारे सवाल जो पूछे जाते हैं उसके थ्रू आपके जीवन में एक परिवर्तन आ सकता है और कई लाखों लोगों को परिवर्तन हुआ है उनके जीवन में। तो इन्हीं शब्दों के साथ तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब कि आप आए और आपने ये सुंदर कार्यक्रम में भाग लिया और हमें सबका मनोबल बढ़ाया और हमें इंस्पायर किया। ओम शांति।